तफसीर सूरत सौफात मक्की सूरत है। इसके 5 रुकू और 182 आयात हैं। अल्फाज और कलिमात की तादाद 873 है, 873, जबकि हुरूफ 3950 हैं, 3950। इस सूरत का नाम पहली ही आयत से लिया गया है, वसाफात, कितार दर कितार बांधने वालों की कसम। सफ सफ इसका रूट है और इसका मौजू और मजमून जो है तौहीद और आखिरत जो है उसका इस्बात है। अहले मक्का इनकार कर रहे थे और यहाँ पे जो है तौहीद और आखिरत के लिए दलाइल दिए गए हैं और इसके साथ साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो है वो सबक आमोज वाकया सुनाया गया है। और सूरत की आखिरी आयात कुफार के लिए तंबी और अहले ईमान के लिए बशारत है। आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक अल्लाह ताला ने जो है वो शिर्क की तरदीद की है और आप देखेंगी तो पूरी सूरत में खास तौर पर शिर्क को रद्द किया गया है। अहले मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते और आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक अल्लाह ताला ने शुरू सूरत में फरिश्तों की कसम खाकर इनके औसाफ बताए हैं और बयान किया है कि लोगों, फरिश्ते तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं और इनके ऐसे औसाफ हैं कि जिनकी वजह से इनकी मुकम्मल बंदगी का इजहार होता है। वस्वाफाति सफा फज्जाजिराति जजरा फत्तालियाति जिक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। रब्बु समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक। अब आप देखिए कि पहली आयत में फरमाया कि वस्वाफाति सफा, कितार दर कितार सफ बांधने वालों की कसम। अब आप देखिए कि वह स्वाफात जो है इसका रूट है स्वाद फा फा और इसके दो मानी बताए जाते हैं। नंबर एक, सफों को पूरा करना कि फरिश्ते जो हैं जब सफों को बांधते हैं तो बीच में जगह खाली नहीं छोड़ते बल्कि उनको पूरा करते हैं। नंबर दो के फरिश्ते जो हैं जब खड़े होते हैं तो बिल्कुल पर खोल कर खड़े होते हैं, यानी परों को खोला भी होता है और परों को बांधा भी होता है। खोलते क्यों हैं? उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, चौकस एक्टिव और तवज्जो के साथ वो अल्लाह का हुक्म सुनते हैं ताकि फौरन अल्लाह की अताअत की तरफ जो है वो लपक पड़े। तो ये हैं कितार दर कितार सफ बांधने वाले, वस्साफाति सफा। अब आप देखिए कि यहां पर जो है ये जो फरिश्तों का कितार बांध कर खड़ा होना, तो एक तो है सफों को बिल्कुल पूरा पूरा करना, मुकम्मल करना, और दूसरा अल्लाह की अताअत के लिए एक्टिव और चौकस होकर खड़े होना। दोनों मानी सामने आ रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों की कसम खाई है। अब आप देखें कि फरिश्ते जो हैं वो कौन है? वो अल्लाह के गुलाम है। और मैं आपके सामने एक हदीस रखती हूँ, ये सही मुस्लिम की रवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम इस तरह सफे क्यों नहीं बांधते जिस तरह फरिश्ते अपने रब ताला के सामने सफ बस्ता खड़े होते हैं। सहाबा ने कहा, सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अगली सफों को पूरा करते जाते हैं और सफे बिल्कुल मिला लिया करते हैं। तो फरिश्ते जो हैं उनकी क्या सिफत है कि एक तरफ जब वो सफे बनाते हैं तो बड़े नज्म व जब्त के साथ, बड़ी तरतीब के साथ, और वो बीच में कोई गैप नहीं छोड़ते, और दूसरी तरफ वो इस तरह से परों को खोलकर और परों को बांध कर खड़े हुए होते हैं कि उधर अल्लाह का हुक्म आए और फौरन वो अल्लाह की अतात के लिए जो है वो लब्बैक कहें। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत जो है ये फरिश्तों की अतात को, फरिश्तों की फरमाबरदारी को और फरिश्तों की सफ बंदी को जाहिर करती है। कभी आप देखें कोई बादशाह हो, कोई जर्नेल हो, और फिर उसकी फौज जो है वो पूरी एक लाइन में, एक परेड में खड़ी हो बड़े डिसिप्लिन के साथ, और जैसे जैसे जो है वो बादशाह या किंग कहता जाए और वो करते चले जाए। तो प्यारी बहनों, दीन में अल्लाह ताला को यही मतलूब है कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह के अहकाम की तामील जो है वो मुनज्जम होके की जाए। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत मतलूब नहीं है जो कि एक गैर मुनज्जम भीड़ की शक्ल में हो, जो बदनज्मी के साथ हो। तो मुसलमानों के भी जो है जो औसाफ है, जिसकी तरकीब दिलाई गई है, वो क्या है कि नमाज के अंदर भी, जैसे नमाज बाद जमात में सफ जो है वो सही तरह से बनाई जाए। जैसे हमें, मैंने एक हदीस आपको सुनाई और दूसरी हदीस एक और है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कहते हैं हजरत अबू मसूद बद्री रजी अल्लाह नो, कि प्यारे रसूल नमाज में हमारे कंधों को हाथ लगाकर फरमाया करते थे, सीधे रहो, आगे पीछे मत हो, वरना तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ पैदा होगा। और इससे क्या बात पता चलती है कि मोमिन जो है वो अपनी जिंदगी में कैसे होते हैं, अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं तो डिसिप्लिन के साथ, अल्लाह के दीन को जब सीखते हैं, जैसे कुरान की क्लास है, तो सफ बांध कर, यानी एक पूरी लाइनों के साथ। अब आप देखें कि बाज़ औक़ात आप मस्जिदों में जाएं, आप देखें कि प्रोग्राम हो रहे होते हैं, दो लोग दीवार के साथ हैं, दो दरवाजे पे बैठे हैं, दो बीच में हैं, दो ने दायरा बनाया हुआ है और स्पीकर जो है वो स्पीच कर रहा होता है, तो कैसा ये मंजर होता है ना। तो क्या बात हमें पता चलती है कि नमाजी हो या अल्लाह का दीन सीखने वाले या जिहाद करने वाले गाजी, कोई भी है जो अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो मुनज्जम होकर डिसिप्लिन के साथ, सफ बांध कर, तरतीब के साथ जो है वो अल्लाह की बंदगी करे, अतात करे। तो पहली चीज जो है वो तरतीब और डिसिप्लिन है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। और दूसरी चीज, सिर्फ तरतीब और डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि तरतीब और डिसिप्लिन की असल रूह जो है वो अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की अतात है, कि जो है वो मकसद ये है कि फिर अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, अल्लाह की हम्द बयान की जाए, फिर अपनी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी की जाए। वस्साफाति सफा। एक बात मैं आपको और बताऊं, जैसे आप उर्दू में भी जब बात करती हैं तो आप किसी चीज में जब ताकीद को बयान करना चाहती हैं तो आप कहती हैं कि मैं सोई, खूब सोई, फिर मैंने मारा तो खूब मारा, फिर हम चले तो फिर खूब चले, है ना, आप ऐसे बात करते। तो यहाँ पे भी क्या है कि फिर सफों का बांधना, कसम है सफों को बांधने वालों की और फिर सफों का बांधना। वह सफाती सफा, सफा जो है ये मस्दर है। तो कितार दर कितार सफ बांधने वालों की कसम, और ये फरिश्तों के लिए खाई गई है। आयत नंबर 2, फज्जाजिराती जजरा, और जाजिमरा इसका रूट है और इसके मानी है झिड़कना, डांटना, धुतकार देना। फिर फरमाया, और फिर झिड़कने वालों की कसम जजरा, और उनका जो है वो झिड़कना, उनका डांटना। आपने पीछे भी पढ़ा है ना कि फाइन्ना माहे जजरा तो वाहिदा, कि बस बेशक कयामत तो एक डांट है। तो जजरा तुन जो है ये डांट, डपट और झिड़कने, धुतकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये फरिश्ते जो है ये किसको डांटते हैं? एक राय तो ये है, बाज मुफस्सरी ने इसका ये तर्जमा किया है कि कुछ फरिश्ते जो बादलों को हांकते हैं, बारिश का इंतजाम करते हैं, ये भी एक राय है। लेकिन जो ज्यादातर मुफस्सरी ने इसका तर्जमा किया है, और वो क्या है कि फरिश्ते जो हैं नाफरमानों और मुजरिमों को जो है वो डांट डपट करते हैं, ये तर्जमा भी इसका किया जाता है कि फरिश्ते क्या करते हैं कि वो नाफरमानों को और मुजरिमों को डांटते हैं। और ये जो डांट डपट है फरिश्तों की, ये दुनिया में हादसा की शक्ल में भी होती है कि किसी पर हादसा कोई कर दिया, क्यों? इसलिए कि वो नाफरमान है और अल्लाह ताला की अताअत में फरिश्ते जो है वो क्या करते हैं कि उनको धुतकार देते हैं, उनको डांटते हैं, या फिर ये कि जब जान निकालते हैं नाफरमानों की तो उस वक्त जो है वो डांट डपट करते हुए। इसी तरह फिर जो है वो कब्र के अंदर मुनकर नकीर और जो नाफरमानों के साथ सख्ती करते हैं, फिर इसी तरह जो है वो कयामत के दिन। तो एक तो ये है डांट डपट। अच्छा, इसी में ये बात भी आती है कि जैसे कुछ जो है वो शयातीन जो हैं वो क्या करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि ऊपर जाएं और वहां से जो है वो अल्लाह अल्लाह ताला जो फरिश्तों को हुक्म दे रहे होते हैं, तो शयातीन जाते हैं और चाहते हैं कि जाकर उसको जो है वो सुन लें। तो फरिश्ते क्या करते हैं कि डांट डपट के जरिए शयातीन को आलमे बाला तक पहुंचने से रोकते हैं। इसकी मजीद तफसील आप आगे पढ़ेंगी। तो फजा जिराती जजरा, फिर उन फरिश्तों की कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं। फिर आयत नंबर 3 में फतालियाती जिक्रा, और फिर उनकी कसम जो कलामे नसीहत सुनाने वाले हैं। तो फिर इसके बाद जो है
कलामे नसीहत सुनाने वालों की कसम, इसके क्या मानी है? अब आप देखिए कि
तालियात जो है, ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि तिलावत करने वालों की, बस फिर तिलावत करने वालों की यानी कुरान पढ़ने वालों की जो है वो कसम। जिक्रा जबकि जिक्र किया जाता है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये फरिश्ते जो हैं क्या करते हैं कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करते हैं, हादसात की शक्ल में जब हादसात आते हैं, ये हादसात को डालते हैं
तो लोग जो हैं वो उसे इबरत हासिल करते हैं। तो यहां पर जो है
ये फरिश्तों की कसम खाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये बता रहे हैं कि फिर ये फरिश्ते ही हैं जो कि क्या करते हैं, फत्तालियाती जिक्रा, कि उनकी कसम जो कलामे नसीहत सुनाने वाले हैं। और कलामे नसीहत जो फरिश्तों का सुनाना है, तो इसके मानी क्या है कि वो लोगों को कुरान की तिलावत या अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जो करते हैं। या फिर आप देखें कि जहां पे जो है वो अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है या कुरान की तिलावत हो रही होती है, तो फरिश्ते परों के परे बनाकर वहां पर जो है वो जमा हो जाते हैं, अपने परों के नीचे उनको जो है वो ढांप लेते हैं। तो ये तीसरी जो सिफत है फरिश्तों की, ये है जिक्र की तिलावत करने वाले। और यहाँ पे जो जिक्र है ये नसीहत की बात है या याद खुदा है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों के जरिए जो नसीहत की बातें नाजिल की हैं, फरिश्ते क्या करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। और ये भी मुमकिन है, मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे वही लाने वाले फरिश्ते मुराद हों कि उन्होंने वही को नबियों तक पहुंचाया, तो तिलावत करके पहुंचाया ना, तो ये भी क्या है कि उनका तिलावत करना है, जिक्र करना है। और इससे मुराद जो है ये भी है कि फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते रहते हैं। तो यहाँ पे फरिश्तों की 3 सिफात बताई गई हैं। नंबर 1 कि वो अल्लाह की बंदगी और अताअत के लिए डिसिप्लिन में होते हैं, सफ बस्ता। नंबर 2 वो शैतानी ताकतों को अल्लाह की नाफरमानी से रोकते हैं, उन पर डांट डपट करते हैं। नंबर 3 वो अल्लाह के अहकामात को खुद पढ़ते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आप देखें कि बंदगी का कोई काम इन तीनों शोबों से खाली नहीं हो सकता। तो पहली डिसिप्लिन और फिर अतात। अब आप भी देख लेंगे आपको जो है वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन इख्तियार करना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, अपनी आपकी जो कुवतें हैं, आपके जो औकात हैं, आपकी जो जिंदगी है, आपके जो पैसे हैं, आपकी जो सलाहियतें हैं, आप उसकी उसको वेल ऑर्गेनाइज करें, अपनी कैरियर प्लानिंग करें कि कैसे मैं आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जा सकती हूँ। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो है वो जैसे जब भी रमजान का महीना आए और उसके आखिरी अशरे में आप अपनी साल भर की प्लानिंग कर लिया करें कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। फिर आप अपने एक दिन की प्लानिंग करें कि मुझे हर रोज जब आप रात को बिस्तर पे जाएं तो आप प्लानिंग कर सकती हैं कि कल मुझे क्या क्या करना है। यानी आपकी सालाना प्लानिंग होनी चाहिए, फिर माहाना, फिर रोजाना। क्यों? यहाँ पे डिसिप्लिन का जिक्र है ना। फिर इसी तरह यानी वक्तन फक्तन कभी जो है वो अपनी कैबिनेट जो है उनको ऑर्गेनाइज करना, और कभी जो है वो आप बाज़ औक़ात बहुत अच्छे नेकी के काम करना चाहती हैं लेकिन आपने लिखे भी नहीं होते, आपके पास प्लान नहीं होते, मौके बहुत से आते हैं लेकिन आप उनको खो देती हैं। तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। और फिर इसी तरह हमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम जो हैं वो क्या करें कि जिस तरह फरिश्ते अल्लाह की अतात गुजार मखलूक है तो हमें भी अल्लाह की अतात गुजार मखलूक बनना चाहिए। और नंबर दो जो है, जैसे बाज लोग फरिश्तों को जो अल्लाह की बेटियां कहते थे तो अल्लाह ताला इसको रद्द कर रहे हैं, इन्ना इलाहकुम ला वाहिद, कि बेशक तुम्हारा खुदा जो है वो एक ही खुदा है। तो एक अल्लाह है, कोई फरिश्ते अल्लाह की बेटियां नहीं है जैसे कि अहले मक्का समझते थे। और वो खुदा कौन है? रब्बुस समावाती वल अर्दी, रब है आसमानों और जमीन का, वमा बैनहुमा, और जो इन चीजों के दरमियान है। तो और उन तमाम चीजों का मालिक है जो आसमान और जमीन के दरमियान है, पर रब्बुल मशारिक, और सारे मशरिकों का मालिक। अब आप देखें कि यहां पर ये बताया जा रहा है कि मशरिक नहीं मशारिक, पर यहाँ पे मगारिब का जिक्र नहीं किया गया। और सूरत अल मारिज आयत 40 में रब्बुल मशारिक वल मगारिब का जिक्र किया गया है। तो दरअसल सूरज सारा साल तुलू होने की जगह बदलता रहता है, इसलिए कई मशरिक हो गए। तो बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि कायनात में सूरज भी कई है ना, हर एक के लिए अपने भी मशरिक हैं, जैसे कई सैयारे हैं। तो यहाँ पर जो है, पीछे आपने सूरत यासीन में भी पढ़ा था है ना, जैसे सूरत मारिज आयत 40 है, इसी तरह सूरत यासीन की आयत नंबर 38 में भी मशारिक और मगारिब के बारे में आपने पढ़ा था। तो अल्लाह ताला जो है इन तमाम चीजों का मालिक है, तो उसी की बंदगी करनी चाहिए। इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जो है बड़े इक्तदार का मालिक है। इन्ना ज़य्यना समा अद्दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक हमने जो है वो सजाया है, हमने आरास्ता किया है, ज़य्यन ब्यूटिफाई किया है, असमा अद्दुनिया दुनिया के आसमान को, बिज़ीनतिल कवाकिब सात जीनत के सितारों की, कि हमने आसमान दुनिया को तारों की जीनत से सजाया है। तो अब जो है यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो आसमान पर जो सितारे बनाए हैं, अल्लाह ताला उसका जो है वो मकसद बता रहे हैं कि ये जो सितारे हैं आसमान पर, ये आसमान का हुसन है, ये उसकी जो है वो जीनत है, इससे आसमान जो है वो खूबसूरत लगता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने आपको ये नजम भी आती होगी, और फिर ये के जगमग जगमग करते सितारे, तो ये अजीब भला मंजर है, कभी आप खुले आसमान में जाके देखें, बड़ा खूबसूरत लगता है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और दूसरी बात जो आयत नंबर 7 में कही गई, वहिफ्ज़ मिन कुल्ले शैतान मारिद, और सितारों को बनाने का मकसद क्या है?
वहिफ्ज़न और हिफाजत की है, मिन कुल्ले शैतान, हर शैतान मारिद सरकिश से, और शैतान सरकिश से आसमान को महफूज किया है। मुफस्सरीन कहते हैं कि
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर जो है वो बताया है कि सितारों को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो आसमान का हुसन है, बल्कि सितारों को पैदा करने का एक और मकसद है कि इनके जरिए शयातीन को मारकर आसमान की बातें सुनने से रोका जाता है, ताकि वो गैब की बातें सुनकर जमीन पर रहने वाले काहिनों को ना बताएं। शयातीन जब भी कोशिश करते हैं, फरिश्ते आसमान के किनारों से अंगारों के जरिए इन्हें मारते हैं, ताकि उन्हें आसमान की बातें सुनने से दूर रखें। तो यहाँ पर जो है इसी का जिक्र किया जा रहा है कि शयातीन आसमान के करीब पहुंचते हैं, फरिश्ते जो बातें आपस में करते हैं जो अल्लाह ने उनको कही होती हैं, और शयातीन सुनने की कोशिश करते हैं, और उनकी बाज बातें सुनकर अगर उन्हें पता चल जाता कि दुनिया में क्या होने वाला है, तो फिर वो आके नीचे वालों को बताते और फिर नीचे से आगे बात पहुंचती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आसमान के ऊपर जो सितारे बनाए गए हैं, तो इन सितारों के जरिए, इन अंगारों के जरिए शयातीन को ऊपर जाने से रोक दिया जाता है, और वो इन अंगारों की जद में आते हैं तो जल जाते हैं। तो यहाँ पर यह बात जो है बताई गई है। और सूरत अश-शुरा आयत 212 में भी आपने पढ़ा था कि इन्नहुम अनिस्समी लमाजुलून, शयातीन वही इलाही को सुनने से कतई तौर पर रोक दिए गए हैं। फिर सूरत मुल्क की आयत 5 में भी आप पढ़ेंगी, सूरत हिजर की आयत 17 और 18 में भी यही बात है। तो यहाँ पे भी ये है कि सितारों को बनाने का दूसरा मकसद जो है वो क्या है कि शयातीन जो है वो ऊपर ना पहुंच सके। इसलिए मैं आपको एक हदीस भी सुनाती हूँ, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने इसके रावी है कि कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक सितारा टूटा और रोशनी हो गई। आपने सहाबा से पूछा कि दौरे जाहिलियत में जब ऐसा वाकया होता तो तुम क्या कहते? सहाबा कहने लगे, हम तो यही कहते कि कोई बड़ा आदमी मर गया या पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी की जिंदगी या मौत की वजह से नहीं टूटता, बल्कि हमारा रब किसी काम का फैसला कर लेता है तो अर्शे इलाही उठाने वाले फरिश्ते जो है तस्बीह करते हैं, फिर आसमान वाले फरिश्ते जो इनके करीब होते हैं, फिर इनसे करीब वाले तस्बीह करते हैं, हत्ता के सुबहान अल्लाह की आवाज उस आसमान तक पहुंचती है। फिर छठे आसमान वाले सातवें आसमान वालों से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, वो उन्हें खबर देते हैं। इस तरह हर निचले आसमान वाले ऊपर वाले आसमान वालों से पूछते हैं, हत्ता कि ये खबर आसमान दुनिया तक पहुंचती है। और शैतान उच्चा कर, जब वो आसमान दुनिया तक पहुंचती है तो शैतान उच्चक कर उसे सुनना चाहते हैं, तो उनको मार पड़ती है, और जो कुछ वो बात लाकर अपने यारों काहिनों पर डाल देते हैं तो वो खबर तो हक होती है, मगर वो उसे बदल देते हैं और घटा बढ़ा देते हैं, तो उन्हें ऊपर पहुंचने से पहले जो है मारा जाता है सितारों के जरिए। और इसी तरह जो है वो फरवरी 1995 में एक मस्नूई सैयारा छोड़ा गया, साइंसदानों ने छोड़ा, और फिर उसने बताया कि जमीन की फिजा में रोजाना 100 मिलियन के करीब जो है वो शहाबिये दाखिल होते हैं और वो फिजा में जल जाते हैं। तो ये जो बारिश है ये शैतीन को आसमान की जानिब चढ़ने से रोकती है। तो यहाँ पे भी उसी का जिक्र है, ला यसमाउना इलल मलाइल आला, ये शैतीन जो है मलाए आला की बातें नहीं सुन सकते। वयुक्ज़फून मिन कुल्ले जानिब, और हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं। काफ ज़ाल फा, क़ज़फ का मतलब होता है ना कि किसी पर इल्जाम लगाना, और इसी तरह जो है वो पत्थर फेंकने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अंगारे मारना यानी सितारे मारना, तो हर तरफ से वो मारे जाते हैं। दुहूरन दुहूरन वला हुम अज़ाबुम वासिब, और फरमाया जा रहा है कि उन्हें भगाया जाता है। इसके मानी है कि ये जो सैयारे और सितारे जो है मारे जाते हैं, तो क्यों? ताकि उन्हें जो है वो धुतकार दिया जाए, उन्हें भगा दिया जाए। और ये लफ्ज जो है ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, और ये वाला दुहूर उनका, और इसके मानी होते हैं कि किसी को जो है वो धुतकारना और किसी को मारना और किसी को जो है वो डराकर जो है वो भगा देना। तो भागाना, हांकना, धुतकारना, सारे इसके मानी हैं। ولهم عذاب واصب، اور ان کے لیے جو ہے مسلسل عذاب ہے. وہ سواد با اس کا روٹ ہے، اور یہ ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو دائمی ہو، مسلسل ہو. الا من خطف الخطفتا، سوائے اس کے کہ من جو خطفا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کسی سے اس کی نظر بچا کر کوئی چیز کو چھین لینا، سنیچ کر لینا. تو سوائے اس کے کہ جو چوری کرے، الخطفہ کا اچک لے. فَأَتْبَاهُ، تو پیچھے لگتا ہے اس کے شِهَابٌ ثَاقِب، ایک انگارہ جلتا ہوا. تو جو ہے کوئی خبر جو ہے وہ جب فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی شیطان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو فالو کرتا ہے شِهَابٌ ثَاقِب، ایک انگارہ جلتا ہوا. فَاسْتَفْتِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر پوچھو ان سے. فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے ذرا سوال تو کرو. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان سے سوال کرو؟ کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جو تھے وہ شرک کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیٹیاں کہتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو، ذرا ان سے جو ہے وہ سوال کرو. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو فستفتہم ہے، یہ لفظ آپ نے سورت یوسف میں بھی پڑھا تھا، اور اس کا روٹ ہے فا تا و، اور فتویٰ بھی اسی سے ہے، اور پوچھنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے نا، اسی لیے فتویٰ پھر وہ دیتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں. تو ان سے پوچھو اہم اشد خلقن امن خلقنا، کہ کیا اہم فرمایا کہ کیا ان کا اشد مشکل ہے خلقن پیدا کرنا، ام یا من خلقنا، یا جو پیدا کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، اہل مکہ سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا تھا؟ پیچھے آپ نے پڑھا نا، زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی سب چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ اس کو بنانا زیادہ آسان تھا یا تمہیں بنانا، یعنی کس کو پیدا کرنا مشکل ہے، یعنی انسان کی نسبت ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا نا. تو وہ رب جو ان کو پیدا کر سکا ہے، آسمان زمین کو، تو پھر وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پہ اشدو جو ہے یہ ٹرمنالوجی ہے، کون سی؟ یہ اسم تفضیل ہے کہ زیادہ شدید اور زیادہ مشکل کے معنی میں ہے کہ کیا چیز پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. انا خلقناہم من طین لازب، کہا کہ انسان کو تو ہم نے ایک لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لازب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لام زا با اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے چپکنے والا، چمٹنے والا، لازم، جم جانے والا جو میٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے. تو انسان جو ہے لیس دار گارے سے پیدا کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے، انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر تک یہاں تک پہنچتا ہے نا، مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. مٹی کی مختلف حالتیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں، نمبر ایک تراب ہے، نمبر دو جو ہے ارد ہے، نمبر تین تین ہے، اور نمبر چار ہے تین لازب، یعنی لیسدار یا چپکدار مٹی، اور نمبر پانچ ہمائی مسنون ہے، نمبر چھ سلسال ہے، اور نمبر سات جو ہے سلسال کل فخار. تو اب یہاں پر جو ہے وہ لیسدار مٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے. بل عجبتا ویسخرون، بلکہ اللہ کی قدرت کے کرشموں پر انسان حیران ہو گیا. بل عجبتا، فرمایا کہ بلکہ تو تعجب کرتا ہے، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں ہیں. جب جو ہے اللہ کے ذکر کی دعوت دی جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، یہ جو آیت نمبر 11 ہے، یہاں سے مضمون بدلتا ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر 39 تک، 39 تک، उन लोगों को तंबीह की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है जो कयामत का मजाक उड़ा रहे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान लाने वालों को तसल्ली दी जा रही है। ये ऐ इंसान कि हमने तुझे तो लेसदार गारे से पैदा किया, तो फिर तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर हैरान होता है, वयस्खरून और मजाक उड़ाता है, और ये सारे मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कयामत का, कुरान का। तो ये क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। वैजा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून, और जब इन्हें समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते। वैजा रऊ आयतन यस्तस्खिरून, और जब ये कोई निशानी देखते हैं, जब किसी मौजे को देखते हैं तो उसे मजाक में उड़ाते हैं। तो अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि आयत को देखने के बाद, आयत को सुनने के बाद इन्हें अमल करना चाहिए था, लेकिन ये लोग जो है वो उसको मजाक में उड़ा देते हैं। आयत के नाजिल होने पर वो मजाक उड़ाते थे। और दूसरा, कौन सी निशानियां हैं, यानी कायनात की निशानियां, कि उसे देखकर जो है क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। और जो है दरअसल यहाँ पे जो उनके इनकार की रविश थी, उसको यहाँ पर नुमाया करके जो है वो पेश किया गया है कि मौजजात जो है वो तो इसलिए होते हैं ना कि लोग उस पर ईमान ले आए, लेकिन ये ईमान लाने की बजाय जो है वो क्या करते हैं? इनकार करते हैं। और ये किस चीज का मौजजा है जो यहाँ पे जिसका जिक्र हो रहा है? जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत को साबित करने के लिए वो कहते थे कि कोई मौजजा दिखाया जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे अकल से दलाइल दे रहे हैं कि इंसान का वजूद भी तो मौजजा है ना, आसमान और जमीन भी तो मौजजा है ना। तो जब ये निशानियां पेश की जाती हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ा देते हैं, मस्खरापन करते हैं। सीन खारा इसका रूट है। वकालू इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, और कहते हैं कि ये तो सरी जादू है। क्या चीज जादू है? जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत की बात करते थे, जहन्नुम और जन्नत की बात करते थे, और जो है वो अकीदा आखिरत की बात करते थे, तो कहते थे कि ये सारी बातें जो हैं ये ऐसी हैं कि जैसे कि जादू, यानी एक अच्छा भला इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता, मानते नहीं थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जादू कहकर उसके वजन को कम करते थे। आइजा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन इन्ना लमबूसून, कहते थे कि जब हम मर चुके होंगे और मट्टी बन जाएंगे, व इज़ामन और जो है वो हड्डियां जो हैं उसका पंजर बन जाएंगे, कि हड्डियां जैसे हो जाना, गोश्त का बिल्कुल ही खत्म हो जाना, इन्ना लमबूसून, तो उस वक्त हम जिंदा करके उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि ये लोग नसीहत तो कबूल नहीं करते, दलाइल को भी कयामत के नहीं मानते, और जो है उल्टा ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे, हम मट्टी हो जाएंगे और हड्डियां बन जाएंगे, इन्ना लमबूसून, क्या उस वक्त हम जिंदा करके उठाए जाएंगे? आयत नंबर 17, अवा आबा उनल अव्वलून, फिर कहते थे और क्या हमारे अगले वक्तों के बाप दादा भी उठाए जाएंगे? कुल नाम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए हाँ। व अंतुम दाखिरून, और उस वक्त जो है तुम लोग जो है वो बेबस हो गए। यहाँ पर जो है दाखिरून का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें बता दीजिए कि उस वक्त तुम लोग जो है वो दाखिरून हो गए। और दाखिरून के मानी क्या होते हैं, ये आप पहले भी बहुत दफा ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं। इसका रूट है दाल खा रा, और इसके मानी है जलील होना, जलील होना। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये जलील होने के मानी में आया है, और जलील के लिए कुरान में आपने जो है वो अजिल्ला, महीन, सागिर, ये सारे लफ्ज पढ़े हैं। इसी तरह अराजिल, असफल, और दाखिर किसे कहते हैं? वैसे तो 7 लफ्ज कुरान में आए हैं जलील के लिए, और ये चौथा दर्जा है। इसके अंदर 3 बातें पाई जाती है, नंबर 1 आजजी, नंबर 2 जिल्लत, और नंबर 3 हकारत। ये लोग जो हैं क्या होंगे, आजिज होंगे, और फिर जब कुछ कर नहीं सकेंगे तो जलील होंगे, और फिर तीसरी बात जो इनके अंदर पैदा हो जाएगी कि ये लोग जो हैं ये निकू बन जाएंगे, जिल्लत की अतात इख्तियार कर लेंगे। दाखिरून फइन्नमा जजरतुन वाहिदतुन, फिर अचानक बस एक जोर की डांट होगी। जा जीम रा का लफ्ज जो है ये डांट डपट के लिए, धुतकारने के लिए इस्तेमाल होता है, और आपने जो है वो सूरत सवाफात में ये लफ्ज पढ़ा है ना कि फजा जीराती जजरा, और यहाँ पे दोबारा आया है कि बस एक जोर की डांट होगी, एक झिड़की होगी। फाइजा हम यंजुरून, और अचानक ये अपनी आंखों से देखेंगे, क्या देखेंगे, कयामत का दिन। वकालू, और कहेंगे या वैलना हाजा योमुद्दीन, उस वक्त ये कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, अरे ये तो कयामत का दिन है। योमुद्दीन, आपको पता है कि दीन जो है इसके एक मानी इस्लाम के हैं, इसके दूसरे मानी डे ऑफ जजमेंट के हैं कयामत का दिन, और तीसरे मानी किसी मुल्क के बादशाह के कानून के हैं। सूरत यूसुफ में ये लफ्ज बादशाह के जो है वो कानून के लिए इस्तेमाल हुआ है, सूरत फातिहा में आपने मैं लिखी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक, और सूरत आले इमरान में आपने पढ़ा था ना इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, इस्लाम के माने में इस्तेमाल हुआ था। तो अब आपको इतनी समझ होनी है कि मौके की मुनासिबत से ये लफ्ज किस मानी में आया है। तीन मानी में आता है कुरान में, लेकिन यहाँ पे कयामत के दिन के लिए है। उस वक्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, अरे ये तो कयामत का दिन है। हाजा योमुल फसल लजी कुन तुम बिही तुकज्जिबून, फिर उस वक्त जो है ये भी हो सकता है कि फरिश्ते ये बात कहें, या फिर जो है वो अहले ईमान ये बात कहें, और ये भी हो सकता है कि वो खुद ये बात कहें। हाजा योमुल फसली, ये है फैसले का दिन। अल्लाजी कुन तुम बिही तुकज्जिबून, वो दिन जिसके बारे में तुम जो थे वो झुटलाया करते थे, तो जिसे तुम झूठ समझते थे। ओ शुरुल्लजीन जलमू व अजवाजहुम, फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि ओ शरू, जमा करो, इकट्ठा करो, हांको अल्लाजीन जलमू, उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया। और जालिम कौन होंगे, जिन्होंने शिर्क किया होगा, जिन्होंने नाफरमानी की होगी, जिन्होंने हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद अदा न किए होंगे। वह अज़वाजहुम, और फिर उनके साथियों को। यहाँ पे अज़वाज लफ्ज जो है मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद उनकी बीवियां भी हो सकती हैं जो गुनाहों में उनकी रफीक थी, और फिर इससे मुराद उनके वो दोस्त भी हो सकते हैं जो के गुनाहों में उनका जोड़ा बन गए, जौज बन गए। तो कहा जा रहा है कि फिर कहा जाएगा कि इन जालिमों को इकट्ठा करो, और इनके साथियों को, अजवाजहुम, और इनके साथियों को, बीवियां भी हो सकती हैं और गुनाहों में साथ देने वाले साथी। वमा कानू याबुदून, और जिनकी ये इबादत किया करते थे, यानी उन माबूदों को भी जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे। इसके क्या मानी है कि उन माबूदों को भी जो है वो इकट्ठा करो जिनकी अल्लाह को छोड़कर ये बंदगी किया करते थे। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इनके वो बुत जिन्हें ये पूजा करते थे, जो इन्होंने स्टैचू बनाए हुए थे, जो इनको नफा नुकसान देने पर कुदरत नहीं रखते थे, तो इनके साथ वो भी जहन्नुम में डाले जाएंगे। अगर किसी ने नेक लोगों की पूजा की है तो अल्लाह उनको जहन्नुम में नहीं डालेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तो नहीं कहा था ना, इसलिए उनको तो नहीं डाला जाएगा। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि अंबिया, सुल्हा और फरिश्तों के अलावा सब माबूदाने बातिल जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर। तो ये जो है ना अल्लाह को छोड़कर, आप पिछली आयत से मिलाएंगी कि वमा कानू याबुदूना मिन दूनिल्लाह, कि वो जिसकी पूजा किया करते थे अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा। फिर फाहदूहुम इला सिरातिल जहीम, फिर इन सबको जहन्नुम का रास्ता दिखा दो। किनको? जुल्म करने वालों को और उनके साथियों अजवाज उनको भी, ममा कानू याबुदून और जो उनके माबूदाने बातिल थे, इन सबको जहन्नुम का रास्ता दिखाओ, रहनुमाई करो। वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून, जब इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा और ये जहन्नुम की तरफ जो है ये जा रहे होंगे, तो उस वक्त जो है फिर क्या होगा कि फिर हुक्म होगा कि इनको जरा रोको रोको, वकीफूहुम इनको रोको, इन्नहुम मसऊलून इनसे कुछ सवाल होने हैं। अब आप देखें कि मुजरिम है, उनको पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा है और फिर अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते आते हैं और कहते हैं नहीं इनको ठहराओ जरा, अभी इनसे कुछ सवाल जवाब होने हैं। मालकुम ला तनासरून, अब फिर उस वक्त जो है उनसे ये सवाल किया जाएगा, उनको जब सवाल जवाब हो रहा होगा तो उन्हें जो है ये पता चलेगा कि अब जो है अब हमारी शामते अमाल आने वाली है, अब हमें अजाब जो है वो मिलने वाला है। तो उस वक्त जो है जब अजाब का हुक्म इन पर नाफिज हो जाएगा सवाल जवाब के नतीजे में, और फिर उस वक्त जो है अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते कहेंगे कि अजाब का फैसला तो हो गया, मालकुम ला तनासरून, अब तुम्हें क्या हो गया है, अरे अब तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। तनासुर जो है इसका मतलब होता है कि एक दूसरे की मदद करना, तो तुम अब एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते, यानी अब मजीद नदामत परेशानी को बढ़ाने के लिए ये कहा जाएगा कि तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते, यानी उन्हें जहन्नुम की तरफ फरिश्ते लेके जा रहे हैं लेकिन और फरिश्ते आगे वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं रुके जरा, अभी तो इनका हिसाब किताब होना है, हिसाब के बाद ये जहन्नुम में जाएंगे। अब जब हिसाब हो रहा है तो अब साथ ही उन्हें जो है ये कहा जा रहा है कि अब जरा करो ना मदद, यानी वो पीर भी और मुरीद भी, लीडर भी और उनके फॉलोअर्स भी, अब सब वहां पे हैं। तो अब जो है उनसे कहा जा रहा है कि अच्छा अब जो है तुम एक दूसरे की मदद करो। बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, आज तो ये अपने आप को एक दूसरे के हवाले किए दे रहे हैं। इसके मानी क्या है कि उस वक्त जो है इनकी ये हालत होगी कि उस वक्त जो है एक दूसरे की मदद भी नहीं करेंगे और मदद कर भी नहीं सकते, बल्कि जो है दुनिया में तो एक दूसरे को बहकाते थे ना, एक दूसरे के लीडर थे, साथी थे, फॉलोअर थे, लेकिन आज जो है मुस्तस्लिमून है। और मुस्तस्लिमून जो है इसके मानी है हवाले कर देना, मुती हो जाना, बड़े ही अतात गुजार बनना, कि आज तो इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। वह अकबल आबाद हम अलाबादिन, फिर इसके बाद ये एक दूसरे की तरफ जो है यतसा अलून सवाल करेंगे, यतसा अलून जो है बहम सवाल जवाब करना, अब आपस में एक दूसरे की तरफ वो मुड़ेंगे और बहम तकरार शुरू कर देंगे। कालू, वो कहेंगे इन्ना कुम कुन तुम तातूनना अनिल यमीन, पैरवी करने वाले अपने लीडरों से कहेंगे कि तातूनना कि तुम आते थे हमारे पास अनिल यमीन सीधे रुख से। अब आप देखें कि जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लीडरों को कहेंगे कि तुम अल यमीन से हमारी तरफ आते थे, अब एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, ये जो है वो कयामत के दिन जब ये मुजरिम बन जाएंगे और इनको जहन्नुम में डाला जाएगा तो उसकी मंजर कशी की जा रही है। और यमीन जो है अरबी जबान में इसके कई मानी है, एक मानी है कुव्वत और ताकत के, अगर यहाँ पे कुव्वत और ताकत के मानी लिए जाए तो लीडरों को उनके पैरोकार कहेंगे कि हम कमजोर थे और तुम कवी थे और तुमने अपनी ताकत की बिना पर हमें गुमराही की तरफ खींच लिया। यमीन के दूसरे मानी है खैर और भलाई के, अगर इस मानी में लिया जाए तो पैरोकार कहेंगे अपने लीडरों को कि तुमने खैर ख्वाह बनकर हमें धोखा दिया, तो हमें यकीन दिलाते रहे कि जिस राह पर तुम हमें चला रहे हो उसी में हमारी खैर है और हम फिर फरेब में आ गए, धोखे में आ गए। तातूनना अनिल यमीन, तुम खैर के रास्ते से हम पर गालिब आ गए। तीसरे मानी है अल यमीन के कसम के, पहले अरब दायां हाथ दूसरे हाथ में देकर कसम खाते थे ना, अगर कसम के मानी लिए जाए मुफस्सरीन कहते हैं मतलब होगा कि तुमने कसमें खा खा कर हमें इत्मीनान दिलाया था कि हक वही है जो तुम पेश कर रहे थे। तो ये है कि उस दिन ये एक दूसरे के साथ जो है वो तू तरा करेंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे। कालू, वो कहेंगे जवाब देंगे जो लीडर हैं, बल लम तकूनु मुमिनीन, नहीं बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे। वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तुम पर कोई जोर तो नहीं था, सुल्तान के मानी होते हैं जोर और इख्तियार, यानी तुम्हारे दिलों पर कोई जोर इख्तियार थोड़ी था कि अब तुम अपना कसूर हमारे ऊपर डाल रहे हो। तुम थे ही सरकश, तुमने हमारी जो पैरवी की ये तुमने अपने दिल की बात मानी। वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तुम पर कोई जोर नहीं था, बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि तुम खुद ही सरकश लोग हो, तागी नाफरमान। फहक्का अलैना कौलु रब्बिना, आखिरकार हम अपने रब के इस फरमान के मुस्तहिक हो गए। इन्ना लज़ाइकून, अब हम अजाब का मजा चखने वाले हैं। अब वो अफसोस कर रहे हैं, मलामत कर रहे हैं कि बड़ा ही सख्त वक्त हम पर आ गया है कि अब जो है हम अल्लाह की पकड़ जो है अल्लाह के अजाब का फैसला हमारे लिए हो गया है। इन्ना लज़ाइकून, अब हम जो है वो जहन्नुम में फेंके जाने वाले हैं और अब हम अजाब का मजा चखने वाले हैं। ज़ाल वौकाफ, ज़ौक जो है इसका रूट है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, या रब्बुल इज्जत तू हमें इन लोगों में शामिल ना करना। कयामत का दिन लोगों बड़ा ही सख्त दिन होगा कि हर शख्स दूसरे पर जो है वो अपने गुनाहों का बोझ डालना चाहेगा, दूसरे पर इल्जाम डालना चाहेगा, उजर पेश करेगा और अपने आप को बचाना चाहेगा। लेकिन एक्सक्यूजेज और दूसरों पर इल्जाम धरना उस दिन अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकता। आज अमल के मैदान में है और फिर अमले सवाले करने चाहिए। फाग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना ग़ावीन, सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। तो अब उस वक्त वो इस बात का इकरार करेंगे कि असल में जब हम खुद ही जो थे वो बहके हुए थे, हम खुद गुमराह थे, तो हमने तुम्हें भी गुमराह कर दिया। तो अगवा जो है यहाँ पे इसके मानी क्या है कि गुमराह के हैं, क्योंकि अगवा जो है इसके ये मानी होते हैं कि किसी को धोखा दे के जो है गुमराह कर देना। فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, इस तरह वो उस दिन उस रोज अजाब में इकट्ठे होंगे, मुश्तरिक होंगे, यानी पैरोकार भी और पेशवा भी, गुमराह करने वाले भी और गुमराह होने वाले भी, सब अजाब में होंगे। यानी वहां पे अल्लाह ताला किसी की माजरत को कबूल नहीं करेगा। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिलमुजरिमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हम मुजरिमों के साथ जो है वो ऐसा ही सलूक किया करते हैं। तो आप देख लीजिए कि साथ साथ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से धमकी भी है। आयत नंबर 35, इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इन्नहुम कानू, बेशक ये वो लोग थे, इज़ा क़ीला लहुम, जब इनसे कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यस्तकबिरून, तो ये घुमंड में आ जाते थे। तो उस वक्त ये क्या करते थे कि उस वक्त जो है ये एक अल्लाह की बंदगी की बात जो है ये नहीं सुनते थे, घुमंड करते थे। और किबर क्या है, वतरुल हक्की वगमतुन नास, यकूलूना, और वो कहते थे इन्ना लतारिकु आलिहतीना, कि क्या हम जो हैं अपने माबूदों को छोड़ दें, लतारिकु तरक कर दें, छोड़ दें, आलिहतीना अपने माबूदों को, ये शायर मजनून, एक शायर मजनू की खातिर। अब आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो क्या इल्जाम लगाते थे कि ये एक शायर हैं और ये दीवाने हैं। तो अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि दुनिया में इनका हाल क्या था कि हक को कबूल नहीं करते थे, रसूल को झुठलाते थे और रसूल को शायर और मजनू कहते थे। बल जा अबिल हक वसद्दक अल मुरसलीन, हालांकि रसूल हक लेकर आया था, कुरान हक था, वसद्दक अल मुरसलीन, और रसूलों की बातों, रसूलों और इसने रसूलों की तस्दीक की थी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था वो किसी रसूल की जो है वो नफी नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था वही था जो कि पहले रसूलों ने दावत को पेश किया था। वसद्दक अल मुरसलीन, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलों की तस्दीक की थी। इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, अब इनसे कहा जाएगा कि तुम लाजिमन दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो। वमा तुजज़ऊना इल्ला बिमा कुंतुम तामलून, और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है ये उन्हीं अमाल का है जो तुम दुनिया में करते रहे। तो अब ये जो है, ये जो मुजरिम है, इनकी मंजर कशी गई की गई कि ये अजाब में होंगे और दर्दनाक अजाब में होंगे, और अजाब जो मिलेगा वो इनके अमाल का बदला जो है वो इनको दिया जाएगा। अब आयत नंबर जो 40 है, ये जो मोमिन है, जो ईमान लाने वाले हैं, इनका जिक्र किया जा रहा है, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के मुखलस बंदे जो हैं वो इस अजाब से महफूज होंगे। तो ये मुखलिस बंदे जो हैं ये कौन होंगे? अब आप देखिए कि आयत नंबर 40 से लेकर 61 तक, 40 से 61 तक अहले ईमान का सिला बयान किया जा रहा है कि उनका जो है वो उनको क्या जजा जो है वो मिलने वाली है। और मुखलस जो है वो किसे कहते हैं? मुफस्सरीन कहते हैं कि मुखलस जो है अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की रहमत के लिए खास कर लिया, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की बंदगी के लिए खास कर लिया, जो दुनिया में अल्लाह की अतात करने वाले थे, यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा और उन्होंने उसकी जो है वो अतात की। तो ये हैं कि जिनकी कोताहियों से अल्लाह दरगुजर करेगा और उनकी एक एक नेकी का बदला जो है अल्लाह ताला उन्हें जो है वो देगा। इल्ला इबादा इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के चीदा बंदे इस अजाब से महफूज होंगे। और ये वो बंदे थे जो कि दुनिया में अल्लाह की अतात किया करते थे खालिस इखलास के साथ। उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूम, इनके लिए जाना बूझा रिस्क है, रिस्क। और कैसा रिस्क है? मालूम, जाना बूझा। मुफस्सरीन कहते हैं कि ऐसा रिस्क जैसे सूरत यासीन में आपने पढ़ा, लहुम फीहा फाकिहतुन, इसी तरह सूरत वाकया में है, फाकिहतन कसीरत इल्ला मक्तूअतिन वला ममनूआ। तो रिस्क मालूम से मुराद ऐसा रिस्क है जितनी गजाओं की तफसील बयान हो सकती है वो सारी मुराद है। और दूसरे इसके मानी मुफस्सरीन ने ये बयान किए हैं कि जन्नत में उनको जो रिस्क मिलेगा उसके औकात मालूम है, यानी सुबह शाम पाबंदी के साथ उन्हें दिया जाएगा, बुकरतों व अशिया। और तीसरे रिस्क के मालूम के मानी है यकीनी और दायमी रिस्क। अब आमतौर पर दुनिया में हर शख्स को धड़का लगा रहता है कि पता नहीं कल कुछ मिलेगा कि नहीं, लेकिन जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि कोई खतरा नहीं, वहां का रिस्क यकीनी है, फवाकेहु, और फिर जो है वो लजीज चीजें। तो इस पे जो है, यहाँ पे जो फवाकेहु है, मुफस्सरीन कहते हैं फाकेहतुन की जमा है, और फाकेहतुन हर उस चीज को कहते हैं जो भूख की जरूरत दूर करने के लिए नहीं, जैसे खाना खाते हैं ना भूख दूर करने के लिए, फवाके उसको नहीं कहते, बल्कि लज्जत हासिल करने के लिए जो चीज खाई जाए, जैसे ड्राई फ्रूट, फ्रूट वगैरह, मेवा जात। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिज़्क मालूम, खाना तो जाना पूजा उन्हें मिलेगा ही, लेकिन फिर उसके साथ लज्जत की चीजें उन्हें दी जाएंगी। वहुम मुकरमून, और वो नेमत भरी जन्नतों में होंगे, सुभान अल्लाह। वहुम, और वो होंगे मुकरमून, इज्जत के साथ। मुकरमून जो है अजाज वाले होंगे, यानी यहाँ पर जो है जो जन्नती लोग हैं, बताया जा रहा है कि ये रिस्क उनको बड़ी इज्जत अजाज और अकराम के साथ दिया जाएगा, जैसे मेहमान की बड़ी इज्जत के साथ जो है मेहमान नवाजी होती है ना। वहुम मुकरमून, आयत नंबर 43 सूरह साफात, फी जन्नतिन नईम, वो नेमत भरी जन्नतों में होंगे, सुभान अल्लाह। और नेमत नून आइन मीम जो है, नेमत का लफ्ज इस्म जिन्स है, तो तरह तरह की नेमतें उन्हें जन्नत में हासिल हैं। अला सुरुरे मुतकाबिलीन, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। शरीर का लफ्ज जो है ये चारपाई और तख्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मुतकाबिलीन एक दूसरे के आमने सामने बैठना। अब आप देखें कि यहाँ पर ये बात बड़ी आम है कि नेमते हों, और फिर उसके बाद नेमतों के अंदर बागात भी हैं, तरह तरह की नेमते हैं, अब उसमें दिल चाहता है ना कि आमने सामने बैठे हुए और एक दूसरे से बातें कर रहे हो, बड़ा दिल चाहता है ना कि चाय पी रहे हो तो किसी के साथ बात भी हो रही हो। तो अब अहले जन्नत जो है इनकी मंजर कशी की जा रही है कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठे हुए होंगे और बातें कर रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, मुतकाबिलीन, पीट नहीं की होगी, एक दूसरे को देख रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। युताफु अलैहिम बिकासे मिमाइन, और युताफु अलैहिम, और इन पर जो है वो फेरे जाएंगे, फिर दौर चलेगा, फिर फिराए जाएंगे। बेकासिन जाम, सागिर मिमाइन शराबे लतीफ के, कास जो है वो किसे कहते हैं? अब आप देखें कि कास का लफ्ज वैसे तो आपको आता है, आप इसको पढ़ चुकी हैं, लेकिन याद रखें कि कास का लफ्ज जो है वो शराब से भरे हुए प्याले या गिलास के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हमारी जबान में जाम या सागिर कहते हैं। दूध या पानी से भरे हुए प्याले को कास नहीं कहते, और अगर प्याला खाली हो और शीशे का हो तो कदहुन कहते हैं, चमड़े का हो तो अलबतुन कहते हैं, मिट्टी का हो तो मुकिन। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कास, मुफस्सरीन कहते हैं कि अरबी जबान में कास का लफ्ज बोलकर हमेशा शराब मुराद ली जाती है। अब वो शराब दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी, यानी उनके पास शराब के जो दौर चलेंगे, मीन मईन जो है उसकी सिफ्त होगी, और मईन जो है इसके मानी क्या है? साफ, शफाफ, निथरी, खुश जायका, मीठा, ठंडा, तो ये उसकी सिफ्त होगी। यानी कास का मतलब है शराब का भरा हुआ प्याला, और आमतौर पे जो दुनिया की शराब होती है वो फले जो फल होते हैं, जो गल्ला होता है, गला सड़ा, उससे वो बनाई जाती है। शराब पिए तो कड़वी, और सर चकराए और इंसान बहकी बहकी बातें करें, और फिर वो बेहयाई की तरफ मुतवज्जो हो, लेकिन ये जो जन्नतियों को शराब पिलाई जाएगी ये क्या है? विकासे मिमाइन, शराब के चश्मों से सागिर भर भर कर इनके दरमियान जो है वो फिराए जाएंगे। बेदा लज्जत अल शारिबीन, बेदा बेदा के मानी है सफेद, चमकती हुई, यानी शराब जो है सफेद चमकती हुई होगी, लज्जतिन लज्जत वाली, लिशारिबीन पीने वालों के लिए। अब यहाँ पे उसकी जो है वो सिफ्त बताई जा रही है। और मजीद आप शराब, जन्नत की शराब के बारे में पढ़ना चाहें तो सूरत तूर की आयत 24, सूरत दहर की आयत 19 जो है आप पढ़ सकती हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि वो खुद उठकर पिएंगे, बल्कि युताफू अलेहिन कोई होगा जो सजाकर उनके सामने जो है वो लेकर घूम रहा होगा। और हदीस में मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिकीन के बच्चे अहले जन्नत के खादिम होंगे, और जो है वो इसी तरह जो है वो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत दहर की आयत 19 में कहा कि इनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहने वाले हैं, कि तुम उन्हें अगर देखो तो समझो लूलुआ मंसूरा, गोया के मोती हैं जो के बखेर दिए गए हैं। लाफीहा गौलुन, और अब यहाँ पे जो है ये मजीद जो शराब के औसाफ हैं बताए जा रहे हैं। तो शराब की पहली सिफत आपने क्या पढ़ी? मईन, कि वो शराब जो है वो बिल्कुल लतीफ और साफ सुथरी होगी। दूसरी सिफ लज्जत वाली जो आयत 46 में पड़ी। तीसरी सिफ ला फीहा गौलुन, के उससे जो है वो सर में दर्द नहीं होगा। नंबर चार, वला हुम अनहा युनजफून, और ना ही इनकी अकल इससे जो है वो खराब होगी। तो आमतौर पर जो दुनिया की शराब होती है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ना ही उसके अंदर जो है वो गौल है। और गौल जो है गैन व लाम ही इसका रूट है। इसके मानी होते हैं कि किसी का जो है वो सर में दर्द का होना, मस्ती, बिगाड़, या किसी को अचानक हिला कर देना कि उसको पता भी ना चले, क्योंकि जब कोई मस्ती में होता है तो वो ऐसा ही करता है। लेकिन अब क्या है, और शराबी असल में अक्सर गलत ऐसे काम करते हैं ना, तो कहा कि शराब पीकर इनके वहां पे ला फीहा गौलुन, तो इनको जो है सर में दर्द नहीं होगी और कोई मस्ती नहीं होगी। वला हम अनहा युनजफून, और ना ही ये बहकी बहकी बातें करेंगे। यूनजाफून जो है नून जा फा इसका रूट है, इसके मानी होते हैं कुएं से आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी खींच लेना, तो खुश्क कुएं को कहते हैं बेरुन नजूफुन। इसी तरह बदमस्त के लिए भी कहा जाता है कि जो मस्त होता है शराब पीकर, तो शराब जो है सारी उसकी अकल को खींच लेती है और इंसान जो है जैसे कुआं खुश्क हो जाता है ना पानी से, इसी तरह शराबी जो है उसकी अकल जो है वो खुश्क हो जाती है, दीवाना हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्नत वालों को जो पीने को शराब मिलेगी वो कैसी बेहतरीन होगी। वइंदहुम कासिरातु तरफईन, और इनके पास निगाहें बिछाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी। कअन्नहुन्ना बैदुम मकनून, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले जन्नत की जो औरतें हैं उनकी जो है वो सिफात बताई हैं। पहली सिफत क्या है, वइंदहुम कासिरातु तरफी ऐन के, और इनके पास होंगी कासिरात। कासिरात जो है काफ स्वाद रा इसका रूट है और इसके मानी है कसर किसे कहते हैं, तूल की जिद है ना, कसर छोटे को कहते हैं, और कासिरातुन नीची रखने वाली, किसको अतरफ नजर को, कि वो नीची रखने वाली होंगी नजर को। ईन, ईन जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है निगाह के लिए, कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली होंगी। इसके मुफस्सरीन ने दो मानी बयान किए हैं। तो पहले मानी क्या है कि वो अपने शोहरों के अलावा किसी मर्द को नजर उठाकर नहीं देखेंगी, और दूसरे मानी भी एक बयान किए जाते हैं और वो ये कि वो अपने शोहरों की निगाहें नीची रखेंगी, यानी वो इतनी खूबसूरत वफाशियार हयादार होंगी कि इनके शोहरों को किसी और की तरफ नजर उठाने की ख्वाहिश भी ना होगी। और अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये औरतें अपने शोहरों से कहेंगी कि मेरे परवरदिगार की इज्जत की कसम, जन्नत में मुझे तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता, जिस अल्लाह ने मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हें मेरा शोहर बनाया तमाम तारीफें उसी की हैं। तो ये जो सिफात बताई गई हैं मुफस्सरीन कहते हैं जन्नत की हूरों की भी हैं और ये जन्नत में जो है वो औरतों की भी हैं, और जो कि शोहरों के साथ जिनका अज़दवाजी ताल्लुक होगा। तो कासिरातु तरफी इन जो है इसके एक मानी अपनी नजर में जो है वो बाहया है, निगाहों को नीचे रखने वाली, और दूसरे माने शोहरों की नजरों को वो नीची रखने वाली हैं। और एक मानी क्या है कि वो खुद नेक हैं हयादार हैं, दूसरे मानी क्या है कि शोहर भी उनको हयादार समझते हैं। दूसरी सिफत है का अन्नहुम बैदुम मकनून, गोया के वो जो है बैद है, और बैद कहते हैं अंडे को, और मकनून जो है इसके मानी है पोशीदा महफूज, तो गोया के वो छुपे हुए अंडे हैं। अरबों के यहां ये मशहूर था कि अंडा परों में छुपा हुआ हो और उस पर कोई मट्टी ना पहुंचे तो उसको अंडे को बहुत अच्छा कहते थे, और वो उसका रंग जर्दी माइल सफेद होता था। और कहते हैं कि जैसे शुतर मुर्ग जो है वो क्या करता है कि जब वो अंडा देता है तो उसके बाद उसको छुपा देता है, तो एक तरफ वो अंडा जो है जो छुपा हुआ होता है उसका रंग अच्छा होता है, वो हिफाजत के साथ होता है, और उसी तरह जो है शुतुरमुर्ग अपने अंडों की हिफाजत में जान लड़ा देता है, बड़ा गयूर होता है ना। तो इस तरह जो है वो खूबसूरत औरतों को जो है वो तशबीह दी गई है सुनहरे रंग के अंडों से, और अरब लोग तो अपनी माशूका के लिए भी सफरा की सिफत इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि औरतें जो हैं वो बहुत ही जो है वो खूबसूरत होंगी, बहुत ही नाजुक होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली, बेदुम मकनून। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे इससे मुराद जो है वो अंडों का खूबसूरत रंग ही नहीं है बल्कि छिलके के अंदर जो झिल्ली होती है, तो औरतें जो है उस झिल्ली की तरह नर्मो नाजुक और गुदास होंगी। तो ये है जो के मंजर कशी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की है।